मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताहि जाते भये अर्हन्तादि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जलहे सयाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग एक तीर्थ पर बैठे हुए हैं। तीर्थ के मायने होता है घाट, जहां से कि हम बड़ी गहरी से गहरी नदी भी पार कर लेते हैं, वो घाट कहलाता है। तीर्थ भी ऐसा ही घाट है जिससे कि हम इस संसार के समुद्र को भी आसानी से पार कर सकते हैं। तीर्थ हमारे जीवन को आसान बनाने में मदद करता है, लेकिन जब तक हमारी अपनी तैयारी ना हो तब तक ये सारी चीजें हमारी उतनी मदद नहीं कर पाती हैं जितनी कि इन्हें करना चाहिए। कोई भी हमारी मदद कब प्राप्त कर पाता है जबकि हमारी तैयारी हो। हम सब के मन में विचार तो जरूर आता है कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं, हमारा जीवन आसानी से बीते, हमारा जीवन बेहतर हो, लेकिन कई बार हम अपने जीवन को आसान बनाने के लिए दूसरे के जीवन को कठिनाई में डाल देते हैं। हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए दूसरे के जीवन को मुश्किल में डाल देते हैं। तब ऐसे में हम देखते हैं कि हमारा जीवन भी अच्छा नहीं बन पाता और हमारे आसपास का जो वातावरण है वो भी इतना कलुषित या दूषित हो जाता है कि उसमें हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। और आज यही हुआ है। अगर हम गौर से देखें अपने आसपास चारों तरफ और अपने भीतर, तो क्या उपाय करें हम? इन तीर्थों की मदद से भी क्या हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं? क्या ये तीर्थ हमारे अपने जीवन को अच्छा बनाने में हमारी मदद कर सकते हैं? क्या ये हमारे कॉन्सेप्ट को चेंज कर सकते हैं, हमारे सोच को ये बदल सकते हैं? मैं तो देखता हूं तीर्थ पर आकर भी हम चाहें तो अपना सोच बदल सकते हैं, वरना हम तीर्थ का भी उपयोग अपने ही सोच के मुताबिक करते हैं। देख रहे हैं आप तीर्थ का उपयोग हम किस तरह कर रहे हैं? किसी से छिपा थोड़ी है तीर्थ का उपयोग। हम अपने उन्हीं भौतिक सुखों की पूर्ति के लिए करते हैं जिन भौतिक सुखों को छोड़ करके हम तीर्थ पर आते हैं, जिन भौतिक सुखों के अनुभव से हमने कभी वास्तविक सुख नहीं पाया, उन सुखों को हम यहां भी चाहते हैं। हम ऐसी ही मानसिकता लेकर के आते हैं, तब फिर बताइए वो तीर्थ हमारे अपने जीवन को आसान बना पाएंगे, हमारे अपने जीवन को निर्मल और पवित्र बना पाएंगे, हमारे दुखों से हमें बचा पाएंगे? ये प्रश्न हमें अपने भीतर स्वयं से पूछना पड़ेगा कि हमारा सोच क्या है। एक बार ऐसा हुआ, आज मुझे सुबह वैसे कोयल बहुत मुश्किल से दिखाई पड़ती है, कौआ तो बहुत आसानी से दिखाई पड़ जाता है। तो सुबह सुबह जो है वो मैं उधर गया था बगीचे में, तो उधर कोयल देखने में आई और अचानक मेरे दिमाग में वो बहुत पुराना एक उदाहरण स्ट्राइक कर गया। ऐसे ही हुआ था कि बहुत सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग और 5 बजे फड़फड़ाहट हुई और कौए ने उड़ान भरी पेड़ पर से, तो कोयल को जरा अजीब लगा और कोयल ने कहा कि अरे मामा, इतने सवेरे इतनी जल्दी कहां की यात्रा शुरू कर रहे। अब कोयल अगर कौए को मामा नहीं कहे तो बुराई हो जाए, एक जबरदस्ती की तो कहना पड़ा उसको, हालांकि ऐसा कोई रिलेशन नहीं है उसका, नहीं तो आप ये समझे कि महाराज जी ने कहा था तो कोई रिलेशन वगैरह होगा उनका, वैसा नहीं। अब वो काला दोनों का रंग है इसलिए मामा कहने में कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं है, तो कह दिया। कौए ने मालूम क्या जवाब दिया, भांजी ऐसा है यहां के लोग ही ऐसे हैं जो मेरी आवाज को समझते ही नहीं है, जिन्हें संगीत वंगीत का कुछ ज्ञान ही नहीं है, मैं तो एक ऐसी जगह जाऊंगा जहां लोगों को संगीत का ज्ञान हो, जहां आवाज का ज्ञान हो, वहां पर मैं बोलूंगा तब लोग मुझे पसंद करेंगे, यहां तो लोगों को ज्ञान ही नहीं। अब कोयल काहे को मुश्किल मोल ले, पर फिर भी कोयल से रहा नहीं गया और उसने क्या कहा कि मामा अपनी आवाज बदल लो तो यहां के लोग भी पसंद करेंगे, जगह बदलने से जीवन बदल जावे ऐसा जरूरी नहीं है, अपने आप को बदल लेने पर ही बदलता है, हम तीर्थ पर आकर के भी अपनी उसी मानसिकता से यहां पर अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहें, मानसिकता हमारी वही रहे तो बताइएगा क्या तीर्थ हमारी मदद कर सकते हैं, हमारी अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं, जब तक कि हम स्वयं उसके लिए तैयार ना हो। इन तीर्थों पर आकर हमें अपने जीवन को सरल और सच्चा बनाने की तैयारी करनी चाहिए, जो जितना सरल और सच्चा है वो उतना बेहतर है, बेहतर होने का कॉन्सेप्ट यही है। हम ये सोचते हैं कि जिसके पास बहुत बड़ा मकान है, जिसके पास सुख सुविधाएं के बहुत से साधन हैं, वो शायद सुखी है, वो शायद बेहतर है। हमारे बेहतर का ढंग यही है, वही तो जब हम जाकर के भगवान को भी वही कहते हैं कि जरा बेहतर लाइफ होनी चाहिए हमारी, बेहतर लाइफ होनी चाहिए, मतलब जितने भी जीवन में सुख सुविधा के अभाव हैं उन सब की पूर्ति हो जानी चाहिए, ठीक है वो भी जरूरी है, लेकिन वही जरूरी है ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वो सारी चीजें भी एक गृहस्थ के जीवन में उतनी ही जरूरी है, लेकिन जीवन के कल्याण के लिए जो करना है तीर्थ के माध्यम से वह भी तो मेरे जीवन में होना चाहिए। मैं ठीक ढंग से अपने परिवार के साथ जी सकूं, भगवान से ऐसी प्रार्थना करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान आपके जैसा बन सकूं ऐसी भी मेरी प्रार्थना आप स्वीकार करना, ऐसा कहने में क्या दिक्कत है। मैं उनके या उनके जैसा बन सकूं, वो जो इस तरह जी रहे हैं बहुत पैसे के साथ जी रहे हैं उनके जैसा मैं भी बन सकूं, जब हम ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं तो क्यों नहीं हम ऐसा कर दें कि आपके जैसा जी सकूं। अगर इतना सा हमारा सोच परिवर्तित हो जाए तो शायद ये तीर्थ हमारे जीवन को सच्चा और सरल बनाने में बहुत हेल्पफुल है, बहुत आसानी से हम यहां अगर हम असुविधाओं के बीच भी आनंद महसूस करके लौटते हैं तो ध्यान रखिएगा घर में आने वाली असुविधाओं को भी हम आनंद से झेल सकते हैं, और यहां यदि हम सुविधाओं के साथ जीना चाहते हैं तो हमने तीर्थ के माध्यम से अपने जीवन को परिवर्तित करने का कोई भी ठीक उपाय ही नहीं किया। तीर्थ हमें शायद यही सिखाते हैं कि तुम बिना थाली के हाथ में लेकर के भी खाकर आनंद ले सकते हो, और वहां तो तुम्हें जब सब कुछ ऐसे लगाया जाता है, जमाया जाता है, तब बैठ के खाते हो। तुम्हें यहां हो सकता है ठीक कमरा ना मिला हो सकता है तुम्हें बाहर पर्ची में रह करके रात काटनी पड़ी हो सकता है किसी ने सवेरे तुम्हें ठीक से नाश्ते के लिए ना पूछा हो और गर्म पानी ना मिल पाया हो। आज तो नहीं मिल पाया था तो आज लोग आपस में कह रहे थे कि क्या कर रहे हो, क्या मचा रखा हुआ है, गर्म पानी नहीं, बताइए, मैं देख रहा था वहां पर,
वो दिख गया, मतलब मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं उसी के लिए देख रहा था, पर वो बाय द वे दिख गया ऐसा। अब बताइए इतनी छोटी छोटी सी चीजें जिनको लेकर के हम यहां तीर्थ पर आकर के भी उन असुविधाओं में जीने का अगर अपना मानस बना ले हुए, तो यही एक बहुत बड़ा मैसेज हम यहां से लेके जाएंगे कि हम ऐसे भी जी सकते हैं। विनोबा 13 महीने तक जेल में रहे, एक चद्दर थोड़े से सामान के साथ उन्होंने 13 महीने बिताए। जब वापस आश्रम लौटे तो अपने कमरे में उतना ही सामान रखा जितना जेल में था। लोगों ने कहा क्या करते हैं आप? बोले जीवन भर का मेरा संकल्प, जब 13 महीने इतने सामान में अल्प परिग्रह में मेरे निकल गए तो अब जीवन भी ऐसे ही निकाल दूंगा। ये इस तरह की जो सोच है वो हमारे जीवन को सरल और सच्चा बना सकती है। इस बात पर हमें विचार करना चाहिए कि जीवन को कैसे हम सरल बनाएं, कैसे हम सच्चा बनाएं। सरल जीवन के मायने हैं ईमानदार होना। ईमानदार होने के मायने हैं बेईमानी नहीं करना। बेईमानी नहीं करने के मायने हैं दूसरे को नहीं ठगना। सीधा सीधा अर्थ है। लेकिन हम अपने जीवन में झांक करके देखें, हम अपने काम बनाने के लिए कहीं दूसरे को ठगते तो नहीं हैं? हम बहुत गौर से देखेंगे दिन भर में कितने मौके आते हैं जब हमारा मन दूसरे को चीट करने का होता है, किसी भी चीज को लेकर, छोटी छोटी सी चीजों को लेकर के, धन पैसे इत्यादि को नहीं, और भी बहुत सारी चीजों को लेकर के हमारा मन ठगने का होता है, हमारा मन दूसरे को झूठा बनाने का होता है। लेकिन ध्यान रखें, जब जब भी हम दूसरे को झूठा बनाते हैं उसके पहले हम झूठे बन जाते हैं, हम सच्चे नहीं रह जाते। जब जब भी हम दूसरे को मुश्किल पैदा करते हैं, मानिएगा हम खुद एक नई मुश्किल अपने लिए मोड़ ले लेते हैं। जब जब हम अपनी ईमानदारी खोते हैं, दूसरे को बेईमान बनाते हैं, तब तब हमारी अपनी ईमानदारी, हमारा अपना ईमान। दुकान पर हम बैठे हुए हैं और हम जितने का लेकर के आए हैं उसमें हमें जेना जितना प्रॉफिट लेना है उतना तो हम लेते हैं, कभी मौका पाकर के उससे ज्यादा भी ले लेते हैं। बाकी कोशिश हमारी पूरी रहती है कि ग्राहक को किस तरह से हम चीट कर सकें। ये जो कर नहीं पाते हैं ये बात अलग है, लेकिन देखिए अपन भीतर झांक कर, किसी ने देखा हुआ है कि बेईमानी करने का मौका नहीं लगा मिला, इसलिए हम ईमानदार हैं। एक्चुअली हमारे अंदर ईमानदारी का कोई विचार नहीं है। बाबा भारती की तरह सबने पढ़ा होगा उदाहरण, जब घोड़े को छल के साथ, कपट के साथ ले जाता था भिखारी बनकर के, तब क्या कहा था बाबा ने? किसी से इस घटना को कहना मत, क्यों? लोगों का ईमानदारी पर से विश्वास उठ जाएगा। और आज यही हुआ है। हम देखें अगर गौर से, हमने दूसरे को अगर बेईमान बनाया है, दूसरे को बुद्धू बनाया है, दूसरे को ठगा है, तो मानिएगा हमने एक अवसर अपने जीवन में ठगाए जाने का अपने हाथ से तय कर लिया है। अब हम भी कहीं ना कहीं ठगाए जाएंगे, क्योंकि हमने दूसरे को ठगने का मन बनाया है। हमारे अंदर ये चीज, ये कभी हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, पर जाना चाहिए। और दूसरी चीज, सच्चे होने और सरल होने के मायने हैं स्पष्ट होना। जैसा है वैसा, कहीं कोई दिखावा नहीं। लेकिन इन दोनों अगर हम देखें तो जैसे हैं वैसे हम कभी प्रकट नहीं करते अपने आप को, जैसे नहीं है वैसा हम प्रकट करने की पूरी कोशिश में हैं। जितनी हमारी क्षमता है उससे भी अधिक हम दूसरे को बताना चाहते हैं। ये दिखावा धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। प्रदर्शन के मायने मालूम क्या होता है? आओ देखो मेरे पास है और तुम्हारे पास नहीं है। प्रदर्शन का आनंद इसमें नहीं है कि मेरे पास है, प्रदर्शन का आनंद, दिखावे का आनंद इसमें है कि आओ देखो मेरे पास है तुम्हारे पास नहीं है। सवाल यह है, मेरा सारा सुख इसमें है कि तुम्हारे पास वो चीज नहीं है। मैंने उस चीज को अपने लिए इसलिए हासिल किया है ताकि दूसरे को दिखा करके कह सकूं कि तुम्हारे पास नहीं है। और जिस दिन तुम्हारे पास हो जाएगी उस दिन मुझे अपने पास प्राप्त करने वाली उस चीज का कोई महत्व नहीं रह जाए। ये हमारे जीवन को मुश्किल में डालने वाली बातें हैं। ऐसे बहुत सी मुश्किलें हमने मोल ले ली हैं। कल तक हमारे पास एक बढ़िया गाड़ी नहीं थी, हम लेके आ गए, चार लोगों को दिखाते फिर कि तुम्हारे पास नहीं है, हमारे पास है, और फिर हमने आठ दिन बाद देखा कि इन चार के पास भी है, फिर अब कोई और दूसरी चाहिए। बताइए, यही ना कर रहे हम? हमारे पास अपने उपयोग के लिए जो आवश्यक है वो तो ठीक ही है, लेकिन उपयोग से भी अधिक हमारे पास होना चाहिए, जिससे कि हमारा स्टेटस बने, जिससे हमारा जीवन चले। उतनी आवश्यक वस्तुएं रखने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन जिनसे मैं चार लोगों के बीच में बड़ा कहलाऊं, अरे भैया बड़ा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन बड़ा कहलवाने के लिए जितनी मेहनत करनी, मशक्कत करनी पड़ती, वो बुरा है और कुछ नहीं। बड़ा तो कोई भी हो सकता है, जो सच्चा है, जो सरल है, वो उतना ही बड़ा है, लेकिन अपने आप को बड़ा करने के लिए साबित, और हमें कितना अपने जीवन को कठिन बनाना पड़ता है, जटिल बनाना पड़ता है, इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। इसलिए हम स्पष्ट रहें, स्पष्ट रहें मतलब जैसे हैं वैसे के वैसे अपने को प्रकट करने के लिए तैयार रहें। और तीसरी चीज, उन्मुक्त हृदयता, जो जितना सरल होगा, जितना ज्यादा सच्चा होगा, वो उतना उन्मुक्त हृदय होगा। आज ऐसा नहीं रहा, आज फैमिली में भी ऐसा नहीं रहा, एक दूसरे के प्रति हम उतने उन्मुक्त नहीं हैं, एक दूसरे के प्रति हमारे संबंधों में उतनी सच्चाई नहीं है, उतनी सरलता नहीं है। आप देख नहीं रहे हैं, कितने भी निकट के हैं संबंध, लेकिन वो चीज नहीं है जो संबंधों से पहले लोगों को ऊष्मा मिलती थी, संबंधों से पहले लोगों को एक आनंद मिलता था, वो आज नहीं है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? बहुत आपसी निकट के संबंध होने पर भी उनके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ झलक ही जाता है। कितना भी निकट का मां और बेटे का संबंध भी क्यों ना हो, मां और बेटे का संबंध बहुत प्यारा संबंध होता है, बहुत डेलिकेट होता है, लेकिन आज क्या है, मेरा बेटा पढ़ लिख करके बड़ा बन जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं, बड़ी स्कूल में पढ़ेगा, बड़ी पढ़ाई पढ़ेगा तो मेरा कद बड़ा हो जाएगा, चार लोगों के साथ जब क्लब में जाऊं तो ये कह सकूं कि फलानी वाली स्कूल में मेरा बेटा पढ़ता है, तुम जानते हो, वो जो छोटा वाला अभी जो पांच साल का है, मैंने वहां भर्ती करवाया, आप क्या समझते हैं? अब मैं अपने बेटे से अपना स्टेटस नापता हूं, अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा करने का मेरा दायित्व था वो नहीं, मुझे अपने बेटे से अपने को ऊंचा उठाना है, इसके लिए कितनी मेहनत करना पड़ रही है, देख रहे हैं आप? और एक दिन जब वो पढ़ लिख के बड़ा होता है, तब उन्मुक्त हृदयता नहीं होने की वजह से इतनी दूर चले जाते हैं कि जहां से यात्रा दो लोगों ने शुरू की थी, और दो से दो बेटे भी हुए थे, एक बिटिया भी हुई थी, और तीनों अपनी अपनी जगह सेटल हो गए हैं, और वे दो ज्यों के त्यों बचे हैं, और क्या बचा है, एक निराशा, एक उदासी कि सबके लिए सब कुछ किया, लेकिन आज हमारे लिए अब कौन है, कोई नहीं है। ये क्या चीज है, ये हम सबके बीच क्यों डेवलप हो रही है? इस वजह से क्योंकि हम शुरू से उस तरह की मानसिकता के नहीं रहे, हमने अपने बच्चों को सच्चाई नहीं सिखाई, सरलता नहीं सिखाई, हम स्वयं भी उनके सामने सच्चे और सरल नहीं रहे, उसका परिणाम ये हुआ। हमारे अपने संबंध आज हमें सुख नहीं दे पाते हैं, न चीजें सुख दे पा रही हैं, क्योंकि हमें दिखावा आ गया, चीजों का उपयोग करना और चीजों का दिखावा करना, चीजों के दिखावा करने में सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलता, और चीजों का उपयोग करने में तो थोड़ा बहुत सुख मिल सकता है, संबंध जोड़ करके उनमें बहुत उन्मुक्त हृदय से उन संबंधों को निभाने में तो सुख मिल सकता है, लेकिन उन संबंधों को ढोना, कॉम्प्लिकेट हो जाना, बहुत एक दूसरे का अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए संबंध स्थापित करे रहना, इस पर हमें विचार करना चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातें आपसे कह रहा हूं, बहुत सांसारिक सी बातें कह रहा हूं, जब हम अपने संबंध अच्छे नहीं बना पाएंगे तो भगवान से क्या बनाएंगे संबंध, भगवान से भी संबंध गड़बड़ा गए हैं हमारे संबंध स्वार्थ के रह गए हैं भगवान से, महाराज से भी संबंध हमारे स्वार्थ के रह गए, जिनवाणी मां से भी संबंध हमारे स्वार्थ के बन जाएंगे अगर हमारी आदत पड़ जाएगी एक बार सबसे संबंध स्वार्थ के बनाने के। हम उनके सामने भी धोखा करने लगेंगे, जब हम किसी अपने बेटे से धोखा कर सकते हैं तो हम अपने गुरुओं से भी धोखा कर सकते हैं, अपने भगवान से भी धोखा दे। हम ऐसे पहुंच जाते हैं गरीब जैसे बनकर के कि सब दे दो मुझे, ये कहो कि धन्यवाद जितना दिया है आपने और नहीं चाहिए, दे मत देना आप। कहा किसी ने आज तक? बहुत मुश्किल है। इतना दिया इसके लिए थैंक्स नहीं, जो नहीं दिया उसके लिए शिकायत, ये तो जरूर करेंगे, लेकिन जितना मिला उसके लिए थैंक्स। दो आंखें हैं जिनसे देख पाता हूं, दो हाथ हैं जिनसे कि काम कर पाता हूं, दो पैर हैं जिनसे चल पाता हूं, किसी को वो भी नहीं मिले होंगे। ये जो हमारा अपना सोच है वो हमें बदलना पड़े, और उन्मुक्त हृदय होकर के दो छोटी छोटी घटनाएं अभी अभी पढ़ रहा था मैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने लिखी, उनके अपने जीवन की घटनाएं हैं, उनसे शायद अपन को कोई संदेश मिले। संभव है कि हमारे अपने संबंधों में ऐसी, जिसको अपन वार्म हार्टेड कहते ना, गर्म जोशी से मिलने का एक जो एक पहले चार्म रहता था वो खत्म हो गया है। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि हम स्वयं अपने भीतर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए, बहुत सरल नहीं रहे, बहुत सच्चे नहीं रहे। अब अगर बहन को राखी बांधने में बुलाना है तो पहले बजट देखना पड़ता है, हाँ वो कितना लाएगी और अपन को कितना रिटर्न करना पड़ेगा। तुम वहीं से राखी भेज दो, हम यहां से पैसे भेज देंगे, खत्म। इतना ही संबंध है, और ये इतने छोटे छोटे संबंध नहीं निभा पा रहे हैं अपन। बाकी बहुत बड़े बड़े श्रद्धा के संबंध की चर्चा बाद में कर लेंगे, भगवान से श्रद्धा का संबंध बाद में निभा लेंगे, अभी तो इतना ही छोटा संबंध निभा लें। क्या हुआ कि दो मित्र थे, उन्हें प्रभाकर ने लिखा कि मेरे बहुत अभिन्न मित्र थे और उनकी जीवन साथी नहीं रही, बिटिया थी तो उसकी शादी करना थी, तो उन्हीं के संबंधी के यहां पर कुछ बात चलाई लेकिन वो बात बनी नहीं, उसको लेकर के खिंचाव हो गया दोनों मित्रों के बीच में। संभव है? देखिए स्वार्थ के साथ ऐसा है कि वो अगर सध जाए तो भी संबंध टूट जाता है, और अगर स्वार्थ नहीं सधे तो भी संबंध टूट जाता है, दोनों ही स्थितियों में। हां अगर आंतरिक बिना स्वार्थ का संबंध है तब तो फिर वो बना रहेगा, लेकिन क्या करें, ऐसी मुश्किलें आ जाती हैं जीवन में, आ गई। तो वो लिखते हैं कि लोग तो ऐसे मौके की फिराक में रहते ही हैं कि ये दो मित्र, इनके बीच में दरार आ जाए फिर हम अपना काम बना लें, तो बस उनको भरना शुरू कर दिया, और एक दीवानी का मुकदमा कि हमारी जीवन साथी जो नहीं रही हैं उनके 3000 रुपए इन पे हैं, दीवानी मुकदमा दायर कर दिया। जिस दिन मालूम पड़ा उस दिन संयोग की बात कि शाम को वो मित्र सामने से आते दिख गए, और वो तो बिल्कुल अनदेखा करके निकलने की फिराक में थे, लेकिन प्रभाकर ने आगे बढ़ के कहा कि अरे अभी से आमने सामने नहीं आओगे तो कोर्ट में कैसे आओगे, अभी से आमने सामने आना बंद कर रहे हो। अरे ठीक है केस लड़ेंगे, पूरी गर्म जोशी से लड़ेंगे, उसमें क्या बात है, आमने सामने होकर के लड़ाई लड़ लेंगे, लेकिन मित्रता का तकाजा तो ये है कि अगर हम हार गए, अगर मान लो तुम हार गए तो तुम्हारी बिटिया के ब्याह की जिम्मेदारी हमारी रहे, मित्रता का तकाजा ये है, और अगर हमें जेल हो जाए तो हमारे आगे पीछे तो कोई नहीं है, लेकिन जब जेल से बाहर निकले तो सबसे पहले तुम मिलो स्वागत के लिए, मित्र का तकाजा तो ये है। बस इतनी बात सुनना थी कि वो मित्र पानी पानी हो गए, कहने लगे घर तक चलो, और घर लेके गए, और जैसे ही घर पहुंचे तो पैरों में गिर पड़ फूट फूट के रोए, सो इनने भी रो लिया और बात आई गई, समाप्त हो गई इतने दिन की। ये क्या है? ये सरलता है, ये सच्चाई है। जब कभी बीच में कोई इस तरह के कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाए, जब बीच में कहीं कोई जटिलता आ जाए, तो हम उनको कैसे आसानी से आगे बढ़ करके और दूर कर ले, ये विद्या अपन को सीखनी चाहिए, तब जीवन आसान बनेगा। हम एक के बाद एक मुश्किलें खड़ी करते चले जाते हैं और सोचते हैं जीवन आसान बन जाए, हम एक से एक जटिलता अपने भीतर उत्पन्न करते जाते हैं और सोचते हैं कि जीवन सरल हो जाए, कोई कर देगा क्या, हाथ डाल करके क्या कोई जीवन को साफ सुथरा किया जा सकता है, हमें स्वयं करना पड़ेगा ऐसे प्रयासों से। प्रोफेसर मित्र हैं कॉलेज में, और एक प्रोग्राम बहुत बड़ा गोष्ठी का आयोजित करना है, तो कह दिया कि मित्र अब कोई अनाउंस करने वाला नहीं है, आवाज तुम्हारी बड़ी प्यारी है और तुम्हारा अच्छा
होल्ड भी है, जरा अनाउंस तुम ही कर दो। अरे अनाउंस तो कराया जाता है किसी किराए के आदमी से, लेकिन इतना बड़ा प्रोफेसर और अनाउंसमेंट के लिए गाड़ी में बैठ करके निकले तो सभा जमेगी जमेगी, क्यों नहीं जमेगी, गोष्ठी सफल हो गई। लेकिन आखिरी में वो मित्र खड़े हुए मिश्र जी और बोलना जो शुरू किया तो टाइम ज्यादा होने लगा, तो इन्हें धीरे से कुर्ता पकड़ के खींच दिया कि क्या कर रहे हो, ज्यादा देर हो गई। लेकिन इतने लोगों के बीच में उन्होंने अपनी इंसल्ट महसूस कर ली, सो बौखला गए और चार अपशब्द कह दिए। जैसे ही चार अपशब्द कहे तो सभा बिगड़ने लगी, तो इन्हें उनको धीरे से माइक लेकर के और जैसे तैसे करके सभा पूरी की। इनके मित्रों ने घेर लिया, तैयार ही रहते मित्र भी, उन्होंने कहा देखो इतनी बातें कह ली सभा में, मंच के बीच में से इतनी गालियां दे ली, तुम्हें माफी मंगवाओ। उन्होंने कहा अरे इसमें क्या माफी मंगवाने की बात है, जब मेरे कहने से और इतना छोटा सा काम अनाउंसमेंट का कर सकता तो मेरे लिए दो चार छोटे शब्द कह लिए तो इसमें कौन सी बड़ी बात, जब मैं उससे छोटा सा काम करवा सकता हूं तो मुझे हल्के शब्द नहीं कह सकता, कह सकता है। और चुप रहे, लेकिन इंतजार में रहे कि अब कैसे कोई बात बने। उन्मुक्त हृदयता हो तो बात बनती है, सरलता हो तो बात बनती है, नहीं तो दुनिया में ढेर सारे कॉम्प्लेक्स, ढेर सारी मुश्किलें, कदम कदम पर मुश्किलें। एक दिन अब जब बात नहीं बनती दिखी तो इनने एक ठो एक छोटे से कागज पर चार लाइनें लिखी कि हम तो सोच रहे थे कि इतने दिन हो गए तुम नखरा कर रहे हो, सुनो अगर नखरे कर रहे हो तो जल्दी से मिलो, चाय पिलवाऊंगा, और अगर सच्ची सच्ची में नाराज हो तो आओ फिर, थोड़ा बहुत हम भी अपना गुस्सा निकाल लें आज, ऐसा लिख करके भेज दिया। वो तो इंतजार ही में थे कि कौन शुरुआत करे, भागे भागे, और रिसेस जब होती है छुट्टी उसमें आए और भूमिका बनाने लगे माफी आफी मांगने की, तो इन्होंने कहा माफी आफी छोड़ो अभी तो चाय पियो। चाय पीते पीते वो बोल ही पड़े कि यार उस दिन बहुत बेवकूफी हो गई। तो कहने लगे किससे, तुमसे कि हमसे, बस इतना जैसे ही कहना था और दोनों हंस पड़े और बात आई गई हो गई। ये उदाहरण पढ़ करके लगता है कि क्या इतने ही सरल और सहज हम बन पा रहे हैं, हम तो छोटी छोटी सी बातों पर लेकर अपने मन को जितना कठोर जितना कठिन बना रहे हैं उससे हमारा जीवन ऊंचा नहीं उठने वाला भैया, इस पे विचार करना चाहिए। और तीसरे चौथे नंबर पर है सादगी और पांचवें नंबर पर भोलापन, ये दोनों चीजें भी अब बहुत मुश्किल हो गई। न ईमानदारी रही, न स्पष्टवादिता रही है, न उन्मुक्त हृदयता रही है, और ना जो है सादगी रही और ना भोलापन रहा। ये पांचों चीजें कम हो गई हैं हमारे अपने जीवन से। हम भले ही बहुत बड़े धर्म की चर्चा कर ले, लेकिन ये चीजें हमारे जीवन में ना हो, ये गुणवत्ता हमारे जीवन में ना हो तो जीवन अच्छा कैसे बनेगा, हम कैसे सहजता से जी पाएंगे। सारे संबंधों में ये चीज लगा लेना, मैंने तो आपको छोटा छोटा सा एक बानगी के लिए उदाहरण दे दिया, दो और छोटे छोटे उदाहरण से अपन समझ ले कि सादगी क्या है। सादगी के मायने ऐसा नहीं समझना कि फटे पुराने खराब से कपड़े पहन के और जी रहे हैं, पैसे बहुत हैं फिर भी उनको शो नहीं कर रहे हैं, ये तो ये सब चीजें सादगी में तो ठीक है, ये भी ठीक है, पर भीतर भी उतनी ही सादगी होना जितनी कि हम अपने जीवन में बाहर सादगी रखते हैं। बाहर की सादगी कई लोग साध लेते हैं लेकिन भीतर की सादगी थोड़ी मुश्किल है। बाहर की सादगी तो गांधी जी का उदाहरण अपन को सामने मिलता है, कितना सादगी से रहे वो। सादगी से रहने का मतलब यही है कि ज्यादा तड़क भड़क में नहीं पड़े, कपड़े भी ऐसे ही तड़क भड़क वाले नहीं पहने, ठीक है भाई। लेकिन इतने अकेले की सादगी नहीं, भीतर मन की भी सादगी होना चाहिए। वो उदाहरण बड़ा प्रचलित उदाहरण है कबीर दास का। कबीर दास को घर में खाने के लाले पड़ने लगे, तो एक दिन बेटे ने कहा कि तुम्हारी ये सब फकीराना जो ढंग है जीने का वो अपन को पसंद नहीं है, और ऐसे कहीं गृहस्थी चलती, बनाई काय को है, लड़के बच्चे हैं, जरा ध्यान दो, कुछ कमाया अमाया करे, भजन अजन से कुछ नहीं होने वाला। बड़े वो तो सरल थे, सीधा साधा जीवन था, ज्यादा दांव पैस तो जानते नहीं थे। तो बेटे ने गुस्से में कहा कि हमने तो सोचा है कि हम चोरी करेंगे। उन्होंने कहा रे तुमने पहले नहीं बताया, ये तो बहुत अच्छी चीज है, देखो आप। तो बेटे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बड़े भगत भी बने फिरते हैं और कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी चीज है, तुमने आज तक नहीं बताया चोरी का। तो बोले आज रात में चोरी करने चलेंगे। उन्होंने कहा ठीक हम भी चलेंगे साथ में। गए और जैसे घुसा जाता है वैसे घुसे और बाहर कबीरदास खड़े रहे। बेटे ने कहा सुनो अगर कोई आहट हो, कोई आता मालूम पड़े तो इशारा कर देना। उन्होंने कहा तुम तो निश्चिंत हो जाओ, हम कर देंगे इशारा। लेकिन वहां कुछ भी नहीं होना था, कोई नहीं आया। बड़े आराम से पोटली बांध बूंद के बेटा बाहर आया। बाहर आया तो बेटे से पूछा क्यों, घर के लोगों को बता दिया इतना सामान ले जा रहे।
बेटे ने कहा ऐसे होती है क्या चोरी, घर के लोगों को बताएंगे क्या? और एक नहीं, नहीं तो फिर ये तो ठीक नहीं है, सुबह वो जागेंगे कितने परेशान होंगे बेकार में, बता तो दो कि इतना सामान ले जा रहे हैं कहीं नहीं ढूंढेंगे वो। अब बताइए ऐसा सादगी वाला जिसका मन है वो चोरी कर सकता है?
अगर हम चोरी करते हैं तो मानिएगा कि हमारे मन में अभी सादगी है नहीं। हम अगर कोई भी अपने जीवन में अपराध करते हैं, अपराध के मायने ही वो है जो दूसरे से छिपा के करना पड़े वो अपराध है, जो जो छिपा के करना पड़े। लेकिन इसके मायने ऐसा नहीं चल रहा, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो कि हम सबके सामने नहीं करते हैं, नहीं तो आप उसको भी शामिल कर लो, जिसमें हमारे मन में है छिपाने का भाव, दूसरे को मालूम ना पड़े। लेकिन हम अगर अपने मन को थोड़ा सा सच्चा बना लें तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमें छिपानी पड़े। असल में हम पहले झूठे पड़ते हैं, बात को हमें हमारी अपनी सादगी को दांव पे लगाना पड़ता है, और आखिरी बात भोलापन, वो तो बहुत मुश्किल है, देखने में कम आता है। बच्चों को भी अब हम भोला नहीं रहने देते हैं, बच्चों को भी हम अब शुरू से ही छोटे से ही बड़ा कर देते हैं, शायद उनकी एज से पहले ही उनसे वो काम करवाना शुरू कर देते हैं जो उस एज में जरूरी नहीं है, उन्हें वे चीजें उन चीजों से परिचित करवा देते हैं जो उनके भोलेपन के साथ कोई संबंध नहीं रखती हैं। देख रहे हैं आप, चाहे वीडियो गेम हो चाहे टेलीविजन हो, इतने छोटे छोटे बच्चे के हाथ में रिमोट है और वो जो उसे करना है वो कर रहा है, जबकि उसके बचपन के दिन थे जबकि उसे तितलियों को पकड़ना था, जबकि उसे फूलों को देखना था, जबकि उसे और लोगों के बीच खिलखिला के हंसना था, वो सब हमने छीन लिया है। और ये जो भोलापन बचपन में छीन लिया है वे बड़े होने पर भी समाप्त ही हो जाता है। बहुत बहुत मुश्किल हमने अपनी नई आने वाली पीढ़ी के साथ खड़ी करी है, अपनी अपनी मुश्किलों को आसान करने के लिए हमने उनके जीवन को मुश्किल में डाला है। 5 साल के बेटे को इतनी बड़ी पोथी और इतना बड़ा बस्ता पकड़ा दिया है कि उसके जीवन में कहां से भोलापन रह जाएगा। देख रहे हैं आप, हमारे अपने जीवन में भी कहां भोलापन है। हमारी हंसी भी सच्ची हो बहुत मुश्किल है, हमारे आंसू भी सच्चे हों बहुत मुश्किल है। अब हमारे पास न सच्चे आंसू हैं न सच्ची हंसी है, सब चीजों में एक एक जिसको कहते हैं मुखौटा, एक फेस वो लगाना पड़ता है, कहां कैसा करना है, कहां किस तरह से बिहेव करना है, ये हम सीख गए हैं। जैसा मेरा व्यवहार है वैसा लोग स्वीकार ना कर पाएंगे, इसलिए मुझे जैसा स्वीकार करेंगे वैसा बन जाना है, मैंने दुनियादार बन जाना है, बस मुझे ठीक ठीक बनना है ये नहीं, मुझे सिर्फ दुनिया में फिट होने है। और आने वाली पीढ़ी को भी हम यही सिखा रहे हैं कि तुम कुछ ऐसा सीख लो जिससे दुनिया में फिट हो जाओ, तुम दुनियादार बन जाओ, ऐसे ईमानदार और सरल और ऐसे कोई जीवन चलता है क्या? ये हम सिखा रहे हैं उनके भोलेपन को। एक छोटा सा उदाहरण है भोलेपन का, भोलेपन के साथ अज्ञानता भी जरूरी है। देखिए ज्ञानी होकर के भी बिल्कुल अज्ञान जैसा हो जाना ये भी एक क्वालिटी है, डिसक्वालिटी नहीं है। बहुत ज्ञानी होकर के भोला भाला हो जाना बहुत बड़ी क्वालिटी है, अज्ञानता के साथ भोलापन तो रहता है लेकिन ज्ञान के साथ भोलापन बहुत कठिन है। बहुत ज्ञानवान होकर के भी और हंस सके खिलखिला सके, एक उदाहरण याद आता है यशपाल जैन के जीवन का, उन्होंने मुझे सुनाया था झांसी के अंदर, बापू के साथ का उदाहरण है। बापू से उनका बहुत निकट का संबंध रहा, उनकी 4 साल की या 3 साल की बिटिया को लेकर वो दिल्ली गए बापू से मिलने, पर बापू उन दिनों बहुत व्यस्त थे हजारों की भीड़ के बीच में और वो कहीं जा रहे थे। अब ये रास्ते के किनारे खड़े हो गए कि अब कैसे मिलना हो, और बिटिया बहुत जिद कर रही थी कि बापू के पास जाएंगे, उसको दिख गए बापू आते हुए रास्ते में और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, बापू बापू देखो हम यहां आए आपसे मिलने के लिए। 3.5-4 साल की बेटी है, हजारों लोगों की भीड़ में उतना बड़ा जिसको लोग महापुरुष कहते हैं उतना बड़ा व्यक्ति, और हजारों की भीड़ में और उसका ध्यान चला गया उतनी छोटी सी गुड़िया, और भीड़ को चीरते हुए बापू उसके पास आए, यशपाल जी उसको लिए हैं उसके पास आकर के, और ठीक जैसे बच्चों को बड़े लोग हो नहीं कर देते ऐसे हैं डराने के लिए ऐसे, तो पास आकर के उसको ऐसे, तो वो खिलखिला के हंस पड़ी, बापू भी हंसे और फिर हजारों की भीड़ के साथ आगे बढ़ गए। बताइएगा ज्ञान के साथ, इसी का नाम तो भोलापन है, और कोई बहुत बड़ी चीज है ये रहा अपने अंदर नहीं रहा। बहुत समझ समझ के चलने वाले लोग हैं अपन, किसके सामने कैसा करना नहीं तो भद्द हो जाएगी। हाँ नहीं, अपने जीवन में कितने भी भीतर अपनी आत्मा में भद्द होती रहे अपनी, बाहर ना हो पावे। हाँ जीवन कितने ही कलुषित होता जावे, जीवन कितनी आडंबर से घिरता जावे वो नहीं, लेकिन लोगों के बीच ना हो जाए। अभी कल ही पढ़ रहा था कि जब कोई माँ झूठे आभूषण पहनती है
तो उन आभूषण का झूठा होना तो खलता है, लेकिन अपना जीवन का झूठा होना किसी को नहीं खलता। आभूषण झूठे हैं सो तो शर्म आती है, मैं कितना झूठा हूं इस बात की शर्म नहीं आती। भोलापन वो है कि जैसे हैं सहज रूप से वैसे ही अपने को प्रकट कर दिया। न ज्ञान का आतंक है न पद का आतंक है। आज तो जो है पद का भी आतंक है, ज्ञान का भी आतंक है, सबका टेरर है अपना अपना। हमारे पैसे का आतंक हम फैला के रखते हैं, हाँ कि देखा मैं पैसे वाला हूं जरा मुझसे जरा दब करके रहा कर, देखा मैं पद इस पद पे बैठा हूं जरा मेरे से नीचे ही रहा कर। नहीं भैया, पद की गरिमा, पद का गौरव उस पद पर रहकर और सरल और सहज होने में है। पैसे की गरिमा, पैसे की उपयोगिता इसमें है कि आप उस पैसे से दूसरे का कितना उपकार कर पाते हैं। आपके अपने बड़े होने का गौरव आपको तभी मिलेगा जब आप छोटे के साथ भी उतने ही प्यार से बैठ पाते हैं जितना कि हम अपने लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि वे हमारे साथ वैसा व्यवहार करें। तब कहलाएगा कि हाँ सरल है। अपने नौकर के साथ भी अपने भाई बंधु के समान व्यवहार कर पाना, उसे भी अपने बाजू में सोफा पर बिठा पाना जिस दिन संभव हो उस दिन समझना कि अब कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहे हैं, वरना अभी अभी सरलता और सहजता और सादगी और भोलापन ये सब किताब तक ही हैं। मैंने तो आपसे कुछ बातें कहीं, अपन सब ने बैठ के इस तीर्थ पर ये बातें करी, अपन कोशिश करेंगे भगवान के सामने जाकर के आज यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान ऐसी सादगी हमको देना, ऐसी सरलता हमको देना। हमने अपने जीवन को बेकार में मुश्किल में डाल लिया है, हमें तो मालूम ही नहीं था कि ऐसा भी जी सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा अब हम अपने जीवन को ऐसा भी जीने के लिए प्रयत्न करेंगे इसी भावना के साथ कि हम सब इन अपनी विशेषताओं को जो हमारी अपनी हैं इनको अपने जीवन में हासिल कर सकें। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज मेरे साथ इस हॉल में बैठ करके नमोकार कर लें। शायद पहली बार, एक तो पहली बार ही क्षेत्र पर आया हूँ और अपन सब बैठे हैं इसी भावना के साथ कि जितना बन सके, भैया 100% तो नहीं बन सकेगा, मैं भी जितनी बातें कह रहा हूँ उसमें से 100% मेरे भीतर भी आपको देखने नहीं मिलेंगे, एक आध परसेंट मिल जाएं तो भी उनमें उन्हीं को ले लीजिएगा और अपने भीतर भी 1% 2% भी वो सारी चीज़ें आ जाएं तो कोशिश करिएगा। अपन तो इतना ही कर सकते हैं इस जीवन में, ऐसी मानसिकता के साथ शुरुआत तो करनी चाहिए। नमोकार भी इसी भावना के साथ अपन करते हैं। नमो अरिहंतानम्, ओम नमो
केवली पन्नतो शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि शरणं पवज्जामि केवलीपण्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि धम्मं शरणं पवज्जामि
बोले भगवान महावीर स्वामी मिथ्या तम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भाष वे को मानु सेवा कानी है द्रव्य जान वे को बंदर भेद मान वे को परम प्रमाणी है अनुभव ताय वे को जीव भेद जावाणी के ज्ञान के सूर्य लुकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा दे ये दिनवाणी भारती तो ये जपो